मैं सत्यजीत सिंह सेंगर पी समाजशास्त्र तृतीय प्रश्न पत्र के संस्कृतिकरण नामक अध्याय का रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। संस्कृतिकरण अर्थात संस्कृतिजाइजेशन। हिंदू जाति व्यवस्था में स्तरीकरण के कारण एक जाति दूसरी जाति की तुलना में ऊंची अथवा नीची मानी जाती है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण जाति की स्थिति सर्वोच्च रही है तथा हरिजनों एवं अस्पृश्यों की सबसे निम्न। जाति व्यवस्था के इन दो छोरों के मध्य सैकड़ों हजारों ऐसे जाति समूह पाए जाते हैं जो अपने आप को एक दूसरे से उच्च या निम्न समझते हैं। जाति समूह के रूप में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने अथवा किसी उच्च जाति के समान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की दृष्टि से निम्न एवं मध्य स्तर की जातियों में किसी उच्च जाति या जातियों के जीवन के तरीके या संपूर्ण जीवन विधि के अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस स्थिति को व्यक्त करने हेतु डॉक्टर M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण नामक अवधारणा को प्रतिपादित किया। दक्षिणी भारत के कुर्ग लोगों के सामाजिक व धार्मिक जीवन के विश्लेषण में डॉक्टर श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मैसूर के कुर्ग लोगों का अध्ययन करते समय डॉक्टर श्रीनिवास ने पाया कि निम्न जातियों के लोग ब्राह्मणों की कुछ प्रथाओं को अपनाने तथा अपनी स्वयं की कुछ प्रथाओं जैसे मांस खाने, शराब का प्रयोग एवं पशु बलि आदि छोड़ने में लगे हुए थे। उनके ऐसा करने का उद्देश्य जाति संस्तरण की प्रणाली में अपनी स्थिति को ऊँचा उठाना था। वे ब्राह्मणों की भोजन संबंधी आदतों, उनकी वेशभूषा तथा कर्म कांडों को अपनाकर अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न कर रहे थे। वे ब्राह्मणों के जीवन पद्धति का अनुकरण करके जाति संस्तरण की प्रणाली में एक दो पीढ़ी में उच्च स्थिति की मांग प्रस्तुत कर सके। गतिशीलता की इस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए श्रीनिवास ने प्रारंभ में ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया, लेकिन बाद में इसके स्थान पर आपने संस्कृतिकरण नामक शब्द का प्रयोग किया। संस्कृतिकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ संस्कृतिजाइजेशन। प्रारंभ में श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक निम्न जाति दो पीढ़ियों में शाकाहारी बनकर मद्यपान को छोड़कर तथा अपने कर्मकांड एवं देवगढ़ का संस्कृतिकरण कर संस्तरण की प्रणाली में अपनी स्थिति ऊंची उठाने में समर्थ हो जाती। संक्षेप में वह जहाँ तक संभव था ब्राह्मणों की प्रथाओं, अनुष्ठानों एवं विश्वासों को अपना लेती। साधारणतः निम्न जातियों के द्वारा ब्राह्मणी जीवन प्रणाली को प्रायः अपना लिया जाता है, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से यह वर्जित था। प्रोफेसर श्रीनिवास ने अपनी इस परिभाषा को बाद में संशोधित करते हुए लिखा है, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और पद्धति को बदलता है। सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जाति जाति संस्तरण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में उसे सामान्यतः बहुत दिनों तक बल्कि वास्तव में एक दो पीढ़ियों तक दावा किए जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। संस्कृतिकरण की प्रथम परिभाषा की तुलना में दूसरी परिभाषा अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें संस्कृतिकरण के केवल ब्राह्मणीय आदर्श को ही नहीं वरन अन्य आदर्श को भी सम्मिलित किया गया है। विशेषताएं। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। यह संस्कृतिकरण करने वाली जाति में केवल पदमूलक परिवर्तन अर्थात पोजिशनल चेंज को प्रकट करती है, न कि संरचनात्मक परिवर्तन स्ट्रक्चरल चेंज को। अर्थात संस्कृतिकरण करने वाली जाति अपनी आसपास की जातियों में ऊपर उठ जाती है और दूसरी नीचे, परंतु पूरा ढांचा वैसे ही बना रहा। दूसरा, संस्कृतिकरण का संबंध जातियों से है। जब निम्न जातियां द्विज जातियों या प्रभु जाति की प्रथाओं, परंपराओं, देवी देवताओं एवं जीवन शैली को अपनाकर जाति संस्तरण में ऊंचा उठने का प्रयत्न करती है तो उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। संस्कृतिकरण। तीसरा, संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है, जनजातियों तथा अर्ध जनजाति समूह में भी यह प्रक्रिया पाई जाती है। पश्चिमी भारत के भीलों, मध्य भारत के गोंडों तथा औराओं तथा हिमालय के पहाड़ी लोगों ने हिंदुओं की जीवन पद्धति का अनुकरण करने का प्रयास किया है। जिस जनजाति में संस्कृतिकरण होता है वह धीरे धीरे एक जाति का होने का दावा करने लगती है और अपने को हिंदू मानने लगती है। स्पष्ट है कि निम्न जातियों एवं जनजाति व अर्ध जाति समूहों ने द्विज जातियों के जीवन पद्धति को अपनाने का प्रयत्न किया है। संस्कृतिकरण के कई आदर्श हो सकते हैं। एक निम्न जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा किसी अन्य प्रभु जाति को आदर्श मानकर भी उसके रीति रिवाजों, प्रथाओं, खान पान और जीवन शैली को अपना सकती है। फिर भी एक जाति के लिए अपने से ऊपर की वे जातियाँ आदर्श होती हैं जिनसे उनकी सबसे अधिक निकटता हो। पांचवा, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध किसी एक व्यक्ति या परिवार से नहीं वरन एक समूह से है। कोई एक अकेला व्यक्ति या परिवार ऊपर की ओर गतिशील होता है तो इसके लिए अपने पुत्रों के लिए बहुएं और पुत्रियों के लिए वर तलाशने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। अतः संस्कृतिकरण एक व्यक्ति तथा परिवार द्वारा न करके एक समूह द्वारा किया जाता है। छठवां, संस्कृतिकरण सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाता है। संस्कृतिकरण करने वाला समूह किसी उच्च जाति की प्रथाओं और जीवन पद्धति को अपनाने के साथ साथ संस्कृत साहित्य में उपलब्ध कुछ नवीन विचारों एवं मूल्यों को भी स्वीकार कर लेता है तथा संस्कृत के धर्म ग्रंथों में पाए जाने वाले जैसे पाप पुण्य, धर्म कर्म, माया, संसार और मोक्ष का प्रयोग भी बातचीत में करने लगता है। सातवां, संस्कृतिकरण पीढ़ियों का प्रयास। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक पद में परिवर्तन के लिए एक निम्न जाति दो या तीन पीढ़ी पहले से अपना संबंध किसी उच्च जाति से जोड़ती है। आठवां, संस्कृतिकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारतीय इतिहास के हर काल में दिखाई देती है। श्रीनिवास ने वैदिक काल से लेकर आज तक के समय में विभिन्न जातियों द्वारा ऊँचा उठने के प्रयासों का अनेक उदाहरणों द्वारा उल्लेख किया है। नौवां, संस्कृतिकरण अपेक्षित समाजीकरण है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अग्रिम समाजीकरण कहते हैं, अर्थात इनमें एक निम्न जाति किसी उच्च जाति की संस्कृति को इस आशा से अपनाती है कि उसे इस जाति में सम्मिलित कर लिया जाएगा। दसवां, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक दूतर्फी प्रक्रिया है। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक दूतर्फी प्रक्रिया है, अर्थात इसमें सदैव ही निम्न जातियाँ ऊँची जातियों की संस्कृति को ग्रहण नहीं करती, वरन उच्च जातियाँ भी निम्न जातियों की संस्कृति के कुछ तत्वों को ग्रहण करती हैं। ग्यारहवां, निम्न जाति की उच्च महत्वाकांक्षा का सूचक है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जाति की उच्च महत्वाकांक्षा और प्रयत्न की सूचक है कि वे उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाएं और अपनी जातीय स्थिति को ऊँचा उठाएं। बारहवां, अनेक अवधारणाओं का समावेश है। संस्कृतिकरण में ब्राह्मणीकरण, संस्कृति ग्रहण, अग्रिम समाजीकरण, अनुकरण आदि सभी अवधारणाओं के तत्व सम्मिलित हैं। संस्कृतिकरण और ब्राह्मणीकरण। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रथम परिभाषा में कहा है कि संस्कृतिकरण करने वाली निम्न जाति ब्राह्मणों के खान पान, रिवाजों, देवताओं, कर्मकांडों और जीवन शैली को अपनाती है। किंतु बाद में कई शोधकर्ताओं ने यह कहा कि निम्न जातियाँ ब्राह्मणों की ही नहीं वरन क्षत्रिय, वैश्य और प्रभु जाति की संस्कृति और जीवन शैली का भी अनुकरण कर रही हैं। डॉक्टर श्रीनिवास ने स्वयं स्वीकार किया है कि संस्कृतिकरण कुछ बढ़ेगा बेढंगा शब्द है, किंतु ब्राह्मणीकरण की तुलना में इसे अनेक कारणों से प्राथमिकता दी गई है। संस्कृतिकरण की बृहद प्रक्रिया में ब्राह्मणीकरण भी सम्मिलित है, किंतु कुछ कारणों से ब्राह्मणीकरण और संस्कृतिकरण परस्पर विपरीत भी हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में, वैदिक काल में ब्राह्मण सोम नामक एक मादक द्रव्य पीते थे, गोमांस का प्रयोग करते थे और रक्त बलि चढ़ाते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने इन चीज़ों को छोड़ दिया। आजकल ब्राह्मण अधिकतर शाकाहारी हैं। यदि ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता तो यह उल्लेख करना आवश्यक हो जाता कि हम कौन से ब्राह्मण समूह को आदर्श रूप में मान रहे हैं और इतिहास के किस काल के ब्राह्मणों की चर्चा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृतिकरण के अभिकर्ता सदैव ब्राह्मण ही नहीं रहे हैं वरन अन्य जातियाँ भी रही हैं। डॉक्टर योगेंद्र सिंह के अनुसार संस्कृतिकरण ब्राह्मणीकरण की अपेक्षा अधिक व्यापक अवधारणा है। श्रीनिवास ने स्वयं यह अनुभव कर लिया था कि जिस प्रक्रिया ने निम्न जातियों को मैसूर में ब्राह्मणों के रीति रिवाजों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया, वह निम्न जातियों में उच्च जातियों के सांस्कृतिक तरीकों का अनुकरण करने की एक सामान्य प्रकृति का ही उदाहरण था। बहुत से मामलों में ये उच्च जातियाँ अब्राह्मण थी, अर्थात क्षत्रिय, जाट और वैश्य जातियों का भी अनुकरण किया गया। संस्कृतिकरण के स्रोत, कारक या सहायक दशाएं। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाले स्रोतों या कारकों की चर्चा की है, जो निम्नलिखित हैं। पहला, बड़े नगर, मंदिर तथा तीर्थ स्थान। ये संस्कृतिकरण के अन्य स्रोत रहे हैं। ऐसे स्थानों पर एकत्रित जन समुदाय में सांस्कृतिक विचारों तथा विश्वासों के प्रसार हेतु उचित अवसर उपलब्ध होते रहे हैं। भजन मंडलियों, हरि कथा तथा पुराने व नए संन्यासियों ने संस्कृतिकरण के प्रसार में विशेष रूप से योग दिया है। बड़े नगरों में प्रशिक्षित पुजारियों, संस्कृत स्कूलों व महाविद्यालयों, छापेखाने तथा धार्मिक संगठनों ने इस प्रक्रिया में सहायता पहुंचाई है। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि क्षत्रिय वर्ण एक ऐसा वर्ण रहा है जिसमें सभी किस्म के समूह सम्मिलित होते रहे हैं। इस संबंध में एक प्रमुख आवश्यकता यही रही है कि ऐसे समूह के पास राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए। यही वह परिस्थिति है जिसमें असंस्कृतिकरण का विशेष रूप से महत्व था। जो भी व्यक्ति राजा या राज्य के प्रधान के रूप में स्थिति प्राप्त करने में सफल हो सका, उसके लिए क्षत्रिय बनना आवश्यक था, चाहे जन्म से उसकी जाति कोई भी क्यों न हो। चारण या भाट जाति ऐसे राजा के छत्री बनाने में सहायक होती थी। यह उनका संबंध किसी छत्री वंश वाली से जोड़ देती थी। ऐसी राजा को अपने जीवन का तरीका परंपरागत छत्रियों के समान बदलना पड़ता था। उसे ब्राह्मणों का समर्थन प्राप्त करना पड़ता था। राजा या शासक और उसकी जाति संस्कृतिकरण के प्रभावशाली सूत्र है। तीसरा, संचार तथा यातायात के साधन। संचार तथा यातायात के साधनों ने संस्कृतिकरण को देश के विभिन्न भागों तथा विभिन्न समूहों में फैलने में योग दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न जातियां समूहों ने उच्च जातियों के जीवन पद्धति और सांस्कृतिक विचारों एवं विश्वासों को अपनाया अवश्य है। साथ ही इसके परिणाम स्वरूप परंपरागत संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी आए हैं। निम्न जातीय समूहों और उच्च जातियों में सांस्कृतिक धरातल पर कुछ आदान प्रदान भी हुआ है तथा लघु व दीर्घ परंपराओं को आपस में एक दूसरे से घुलने मिलने का अवसर मिला है। चौथा, शिक्षा। निम्न जातियों में शिक्षा का प्रचार होने पर भी शिक्षित व्यक्तियों में उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाने की इच्छा उत्पन्न हुई। पांचवा, सामाजिक सुधार आंदोलन। देश के विभिन्न भागों में निम्न जातियों की स्थिति को सुधारने एवं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए अनेक सुधार आंदोलन हुए हैं। आर्य समाज, प्रार्थना समाज और गांधी जी के अछूतोद्धार प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप निम्न जातियों की समाज की स्थिति में परिवर्तन हुआ है और उन्होंने अपना संस्कृतिकरण किया। आर्थिक सुधार। देश के विभिन्न भागों में कई निम्न जातियों ने नवीन आर्थिक सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन के तरीकों को उच्च जातियों के समान बनाने और द्विज वर्ण समूह में आने को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है। सातवां, नवीन संविधान एवं कानून। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में लागू नवीन संविधान में जाति, धर्म, रंग, लिंग, प्रजाति व जन्म के साथ किसी भी नागरिक के प्रति भेदभाव न बरतने की बात कही गई है। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम ने जाति छुआछूत को कानूनन समाप्त कर दिया है और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया है। 1954 का विशेष विवाह अधिनियम अंतरजातीय विवाहों की स्वीकृति देता है। इन अधिनियमों ने भी संस्कृतिकरण करने के लिए निम्न जातियों को प्रेरित किया है। आठवां, नगरीकरण। औद्योगिकरण के कारण बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ है। बड़े नगरों में जाति भेदभाव में कमी आई तथा प्रभु जाति तथा उच्च जाति का निम्न जातियों पर नियंत्रण भी शिथिल हुआ है। फिर नगरों में निम्न जाति द्वारा उच्च जाति के खान पान, रहन सहन, विश्वास, कर्मकांड व जीवन शैली को अपनाने पर कोई विरोध भी नहीं करता है। वहाँ अपनी असली जाति छुपाकर उच्च जाति में सम्मिलित होना तथा नया नाम रख लेना आसान होता है। भारत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। डॉक्टर श्रीनिवास के अनुसार सामान्य रूप से संस्कृतिकरण एक जाति को जाति संस्करणों में ऊंचा पद प्राप्त करने योग्य बनाता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत केवल उच्च जाति के रीति रिवाजों और आदतों को ही नहीं बल्कि उनके विचारों, मूल्यों तथा आदर्शों को भी ग्रहण करना आता है। वंश समूह के क्षेत्र में संस्कृतिकरण वंश के महत्व पर जोर देता है और इसलिए उच्च वंश के साथ समरूपता स्थापित करना भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में आता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में एक जाति विशेष को आदर्श मान लिया जाता है और जो निम्न जाति या जनजाति उसे आदर्श मानती है वह अपनी उस आदर्श जाति की ही रीति रिवाज कर्म कांड विचारधारा व जीवन पद्धति को अपनाने का प्रयत्न करती है। अक्सर यह आदर्श द्विज जातियाँ अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही होते हैं जिनका कि यज्ञोपवित संस्कार होता है। इनमें ब्राह्मण आदर्श सबसे श्रेष्ठ होता है। आधुनिक भारतीय समाज में ब्राह्मण आदर्श के अतिरिक्त क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध आदर्श भी संस्कृतिकरण के आदर्श हो सकते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के स्थानीय स्वरूप भी संभव है। ब्राह्मणों की तुलना में क्षत्रिय वैश्य व शूद्रों की संस्कृति में स्थानीय सांस्कृतिक तत्व अधिक देखने को मिलते हैं। इसलिए देश के विभिन्न भागों में क्षत्रिय या वैश्य होने का दावा करने वाली जातियों में परस्पर गहरी भिन्नताएं मौजूद है। यह बात शूद्रों के विषय में और भी स्पष्ट रूप में लागू होती है। इसलिए शूद्रों में कुछ उपजातियों की जीवन पद्धति का अत्यधिक संस्कृतिकरण स्थानीय स्वरूप के अनुसार हुआ है। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में प्रभु जाति की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। प्रभु जातियाँ जाति होने के लिए किसी भी जाति में निम्नलिखित तीन विशेषताएं आवश्यक हैं। पहला, स्थानीय समुदाय में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि में से एक बड़े भाग पर उस जाति का स्वामित्व हो। दूसरा, उस जाति की सदस्य संख्या काफी हो। और तीसरा, स्थानीय सोपान में उस जाति को उच्च स्थान प्राप्त हो। भारतीय गाँवों में प्रभुता स्थापित करने में भूमि का मालिक होना एक बड़ा निर्णायक तत्व है। भूमि पर स्वामित्व से आर्थिक शक्ति एवं सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और इसलिए वह प्रभु जाति के रूप में उभरता है और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में एक आदर्श जाति के रूप में मान लिया जाता है। चाहे जाति सोपान में उसकी स्थिति नीची ही क्यों न हो। उदाहरण अर्थ, पंजाब के कुछ भागों में जाट भूस्वामी ब्राह्मणों को अपना सेवक समझते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में माधोपुर गांव में किसी समय प्रभुता संपन्न ठाकुर अपने गुरु और पुरोहितों के अतिरिक्त अन्य किसी ब्राह्मण के साथ हाथ का बना भोजन नहीं खाते थे। कुछ भी हो, प्रभु जाति को की अपनी एक स्थानीय प्रतिष्ठा होती है और अन्य जाति के लोग उस प्रभु जाति के व्यवहार जीवन के ढंग आदि का अनुकरण करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार यदि स्थानीय प्रभु जाति ब्राह्मण है तो वहाँ संस्कृतिकरण की प्रवृत्ति ब्राह्मण आदर्श की होगी और यदि वहाँ प्रभु जाति राजपूत या बनिया हो तो क्षत्रिय या वैश्य आदर्श की ओर। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में ब्राह्मण आदर्श को प्रायः सभी लोग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यही कारण है कि क्षत्रिय तथा अन्य मदिरा सेवी और मांसाहारी समूह भी इस आदर्श की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। अधिकतर क्षेत्रों में मांसाहारी व मदिरा सेवन निम्न जातियों के चिन्ह माने जाते हैं। ब्राह्मण पुरोहित को जाति व्यवस्था में सदैव ही अन्य आदर्शों से ऊँचा माना जाता रहा है। संस्कृतिकरण इसी ऊँचे आदर्शों की ओर क्रियाशील होता है। डॉक्टर निवास के अनुसार संस्कृतिकरण के लिए किसी विशेष आर्थिक स्तर की आवश्यकता नहीं है और न उसका किसी समूह की आर्थिक स्थिति पर कोई अनिवार्य प्रभाव पड़ता है। यद्यपि यह सच है कि आर्थिक स्तर ऊंचा होने से संस्कृतिकरण में सहायता अवश्य ही मिलती है। इसके अलावा राजनीतिक सत्ता प्राप्त होने से, शिक्षा का स्तर बढ़ने से और नेतृत्व का अवसर मिलने से संस्कृतिकरण में सहायता मिलती है। डॉक्टर श्रीनिवास का यह भी मत है कि यह जरूरी नहीं कि संस्कृतिकरण के माध्यम से किसी भी जाति को जाति संस्करण में उच्च स्थान मिल ही जाएगा। यह बात हरिजनों पर विशेष रूप से लागू होती है। डॉक्टर श्रीनिवास के शब्दों में, किसी अस्पृश्य जाति का संस्कृतिकरण कितना भी पूर्ण क्यों न हो, वह अस्पृश्यता की बाधा को पार करने में असमर्थ है और शायद इसलिए एक हरिजन को क्षत्रिय वैश्य या ब्राह्मण की स्थिति को प्राप्त करते हम नहीं देखते। डॉक्टर श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारतीय समाज में बहुत पहले से ही चलती आ रही है। हाँ, इतना अवश्य है कि पहले जमाने में संस्कृतिकरण का ब्राह्मणों द्वारा वैधीकरण आवश्यक था। मध्ययुगीन भारत के अध्येता श्री बर्टन स्टीन ने लिखा है कि दक्षिणी भारत में विजयनगर राज्य के शक्तिशाली शासकों को भी ब्राह्मणों की वैधतादायी क्षमता को मानना और उसको मूल्य चुकाना पड़ता था। यदि किसी भी जाति का कोई व्यक्ति राजा बनने के बाद अपने को उच्च जाति का घोषित करना चाहता था तो यह तभी संभव था जबकि ब्राह्मण किसी संस्कार के द्वारा उसके दावे को स्वीकार करके वैधता प्रदान करे। भारतीय इतिहास में इस प्रकार के बहुत से उदाहरण मिलते हैं जबकि निम्न जाति के किसी व्यक्ति ने अपने सैनिक शक्ति के आधार पर सत्ता की स्थापना की और ब्राह्मणों ने उसका राज्याभिषेक संस्कार करके उसे क्षत्रिय जाति के नाम से पुकारा। संस्कृतिकरण की अवधारणा में दोष। श्रीनिवास का मत है कि संस्कृतिकरण एक उपयोगी अवधारणा होते हुए भी बहुत स्पष्ट अवधारणा नहीं है। उन्होंने लिखा है कि संस्कृतिकरण निस्संदेह एक बेतुका शब्द है, फिर भी कई कारणों से वह ब्राह्मणीकरण से बेहतर पाया गया है। इस अवधारणा की जटिलता व ढीलेपन के कारण ही भारतीय समाज के विश्लेषण में इसकी उपयोगिता बहुत ही सीमित है। इसी बात को स्वीकार करते हुए डॉक्टर श्रीनिवास ने लिखा है, संस्कृतिकरण एक अत्यंत जटिल और विषम संकल्पना है। वास्तव में इसे एक अकेली संकल्पना मानने की अपेक्षा अनेक संकल्पनाओं का एक ढेर मानना अधिक उपयोगी होगा। यह एक विस्तृत सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया के लिए केवल एक नाम मात्र है। संस्कृतिकरण की अवधारणा का दूसरा दोष यह है कि इस प्रक्रिया का दर्शन देश के सभी भागों में देखने को नहीं मिलता है। संस्कृतिकरण के अंतर्गत निची जातियां ऊंची जातियों की संस्कृतियों का क्रमशः ग्रहण करती है, यद्यपि जाति प्रथा में इसका निषेध है। डॉक्टर श्रीनिवास ने लिखा है कि संक्षेप में निजी जाति ने जहाँ तक संभव हो सका ब्राह्मणों के प्रथाओं संस्कारों और विश्वासों का ग्रहण कर लिया, और इसी भांति एक निजी जाति द्वारा ब्राह्मणों के जीवन के तरीके को अपना लेना बहुधा दिखाई देने वाली एक प्रक्रिया होते हुए भी सैद्धांतिक तौर पर निषिद्ध है। निम्न जाति द्वारा उच्च जाति या ब्राह्मण संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया किसी विशेष समुदाय या देश के किसी विशेष भाग में भले ही सच हो, किंतु संपूर्ण देश पर लागू नहीं की जा सकती। डॉक्टर मजुमदार ने मोहना गांव के अध्ययन में यह दर्शाया कि निची जातियों में ऊंची जातियों की संस्कृति को ग्रहण करने की कोई प्रवृत्ति नहीं दिखलाई पड़ती, और न ही किसी निची जाति के आचार विचार में परिवर्तन होने से उसको सामाजिक संस्करण में कोई ऊंचा स्थान मिल जाता है। यदि कोई चमार ब्राह्मण के समान आचार व्यवहार करने लगे तो क्या वह ब्राह्मण बन जाएगा या उसे ब्राह्मण जैसी स्थिति मिल जाएगी? कभी नहीं। इसलिए डॉक्टर मजुमदार का प्रश्न है, यदि संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है तो वह कहाँ रुकती है और क्यों रुकती है? आपने यह दर्शाया है कि सामाजिक संस्करण में जातियों की प्रगति वर्टिकल या ऊपर की ओर ना होकर क्षैतिज हॉरिजॉन्टल अर्थात एक ही जाति की विभिन्न उपजातियों में होती है। ब्राह्मणों में ही नहीं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र यहाँ तक कि अस्पृश्य जातियों में भी अनेक उपजातियाँ होती हैं और उनमें उच्च नीच का संस्करण होता है, और इनमें सामान्य प्रवृत्ति यह है कि अपने मूल जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि में जो उच्च नीच का संस्करण या सोपान है उसमें नीची स्थिति से ऊंची स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार परिवर्तन या प्रगति जाति संस्करण के अंतर्गत ऊर्ध्वन मुखी न होकर क्षैतिज होती है। डॉक्टर श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत संस्कृतिकरण की अवधारणा इसका समर्थन नहीं करती। तीसरा, संस्कृतिकरण की अवधारणा का एक दोष यह है कि यह अवधारणा इस सत्य को भी छिपा जाती है कि संस्कृतिकरण की एक विपरीत प्रक्रिया भी भारतीय समाज में क्रियाशील है। डॉक्टर मजुमदार ने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि भारत में सभी भागों में संस्कृतिकरण से कहीं अधिक असंस्कृतिकरण दिखलाई पड़ता है, जिसके अंतर्गत स्वयं ऊंची जातियाँ ही अपने विशिष्ट आचार विचार रीति रिवाज वेशभूषा को आज छोड़ती जा रही है। उदाहरण अर्थ, कश्मीरी पंडितों में बहुत से लोगों ने अपने परंपरागत आचार विचार और रीति रिवाजों को छोड़ दिया है। असंस्कृतिकरण का एक अन्य उदाहरण उचित जातियों द्वारा निची जातियों के व्यवसाय को अपनाना है। आज बहुत से ब्राह्मण और क्षत्रिय व्यापार वाणिज्य कर रहे हैं। डॉक्टर मजुमदार का मत है कि भारतीय समाज में संस्कृतिकरण की अपेक्षा असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया अधिक क्रियाशील है। संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण में संबंध। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण व पश्चिमीकरण के संबंध में पाए जाने वाले विभेद का उल्लेख किया है। श्रीनिवास का मत है कि भारतीय समाज में कोई भी विश्लेषण पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण की अंतःक्रिया से पूर्ण नहीं होगा, फिर भी इन दोनों अवधारणाओं में निम्नांकित अंतर है। पहला, संस्कृतिकरण में मांस मदिरा के सेवन पर रोक लगाई जाती है, जबकि पश्चिमीकरण में मांस मदिरा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है। दूसरा, विवाह और तलाक के आधार पर भी दोनों प्रक्रियाओं में अंतर है। निम्न जातियों में विधवा पुनर्विवाह और तलाक की मनाही नहीं है, उनमें पति परमेश्वर की अवधारणा भी प्रचलित नहीं है। ये सभी बातें पश्चिमीकरण के अनुरूप हैं, किंतु ब्राह्मणों में विधवा पुनर्विवाह और तलाक की मनाही है। संस्कृतिकरण करने वाली जाति विवाह संबंधी ब्राह्मण के प्रतिमानों को अपनाती है। तीसरा, संस्कृतिकरण में धार्मिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन दिया जाता है, जबकि पश्चिमीकरण में लौकिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देता है। चौथा, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारतीय इतिहास में निरंतर चलती रही है और आज भी चल रही है। दूसरी ओर पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ अंग्रेजों के शासन काल से हुआ और कुछ क्षेत्रों में अधिक वेग के साथ स्वाधीन भारत में भी हो रहा है। पांचवा, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारतीय समाज में एक विशिष्ट अंग अर्थात जनजातियों और निम्न जातियों तक ही सीमित है। वे ही ब्राह्मणों, क्षत्रियों और प्रभु जातियों या अपने से ऊंची जातियों की जीवन शैली को अपनाने में लगे हुए हैं, जबकि पश्चिमीकरण का संबंध भारतीय समाज के सभी अंगों व जातियों से है। वर्तमान में पश्चिमीकरण के प्रभाव, उससे प्रभावित होने वाली संख्या और प्रभावित होने वाले प्रकार सभी में वृद्धि हो रही है। छठवां, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया विदेशी और बाह्य है, जबकि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आंतरिक और स्वदेशी है। सातवां, संस्कृतिकरण का आदर्श सभी जगह एक सा नहीं है। भारत के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न जातियां संस्कृतिकरण का आदर्श रही है। इसके विपरीत सारे भारत में पश्चिमीकरण का एक ही आदर्श पाया जाता है। आठवां, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया रूढ़िवादी है, जबकि पश्चिमीकरण की प्रकृति तार्किक है। नौवां, संस्कृतिकरण करने वाली जाति ऊपर की ओर गतिशील होती है और उसकी पदमूलक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, जबकि पश्चिमीकरण करने वाली जाति की गतिशीलता में कोई परिवर्तन घटित नहीं होता है। संस्कृतिकरण में प्रभु जाति की भूमिका। श्रीनिवास का मत है कि अनेक स्थानों पर स्थानीय प्रभु जातियां संस्कृतिकरण का आदर्श रही हैं। प्रभु जाति वह जाति है जो उस गांव या समुदाय में संख्या की दृष्टि से अधिक हो, जिसका स्थानीय कृषि योग्य भूमि के बड़े भाग पर स्वामित्व हो, जिसके पास आर्थिक राजनीतिक शक्ति हो, जिसे जाति संस्करण में उच्च स्थान प्राप्त हो। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जातियां प्रभु जातियों के रूप में विद्यमान हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ग की जातियां ही प्रमुख प्रभु जातियां हैं। संख्या की दृष्टि से अधिक होने पर भी कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां निम्न जातियां प्रभु जाति के रूप में हो। उत्तर प्रदेश में अहिर, जाट, गुज्जर व राजपूत, गुजरात में पाटीदार, मैसूर में लिंगायत और ओकालीगंज में आंध्र में काम व रेड्डी, महाराष्ट्र में मराठा, केरल में नायर, राजस्थान में जाट व राजपूत आदि प्रभु जातियां हैं। श्रीनिवास का विचार है कि किसान प्रभु जातियां ही अनुकरण के स्थानीय आदर्श प्रस्तुत करती हैं और वे ही क्षत्रिय और अन्य आदर्शों का माध्यम बनती हैं। श्रीनिवास ने कहा है, स्थानीय प्रभु जाति का संस्कृतिकरण के विभिन्न आदर्शों के लिए माध्यम होना सांस्कृतिक संचरण की प्रक्रिया में उस जाति के महत्व का सूचक है। प्रभु जातियों ने जहां एक ओर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को विकसित करने में योगदान किया है, वहीं उन्होंने इस प्रक्रिया में बाधा भी उत्पन्न की है। गांव में प्रभु जाति के बुजुर्ग ही बहुत्ववादी संस्कृति और मूल्य व्यवस्था के प्रहरी होते थे। वे एक जाति को दूसरी जाति के पुश्तैनी धंधे को अपनाने से रोकते थे। प्रभु जाति किसी नीची जाति के कर्मकांड और जीवन शैली में छोटे छोटे परिवर्तनों को तो उपेक्षा कर देती थी, किंतु यदि वह किसी महत्वपूर्ण उच्च जाति चिन्ह को हत्याने लगती है तो वे उसे रोकते तथा दंड भी देते थे। सन 1921 की जनगणना रिपोर्ट में उल्लेख है कि जब उत्तरी भारत में अहिरों ने अपने आप को क्षत्रिय कहने और यज्ञोपवीत पहनने का निश्चय किया तो प्रभुता संपन्न जातियों में रोष फैल गया। इसी प्रकार से उत्तर बिहार में उच्च जातीय राजपूतों और भूमिहार ब्राह्मणों ने अहिरों को द्विजों के चिन्ह धारण करने से रोका था, जिसके परिणामस्वरूप उनमें मारपीट व मुकदमेबाजी भी हुई थी। श्रीनिवास का विचार कि प्रभु जाति का कार्य केवल बहुतत्ववादी संस्कृति के संरक्षक होने तक ही सीमित न था, वह निम्न जाति में प्रभु जाति की अपनी प्रतिष्ठादायक जीवन शैली का अनुकरण करने की इच्छा भी जागृत करती है। संस्कृतिकरण से संबंधित अन्य प्रक्रियाएं। संस्कृतिकरण से सामाजिक परिवर्तन की कुछ अन्य प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहला, पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण की पश्चिमी समाज विशेष रूप से अंग्रेजियत के प्रभाव से उत्पन्न परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। यह अंग्रेजी शिक्षा, नगरीकरण, औद्योगिकरण, वैज्ञानिक पद्धति, बुद्धिवाद से संबंधित है। वर्तमान समय में एक ओर अत्यंत पश्चिमीकृत भारतीय लोग संस्कृतिकरण के कुछ तत्वों को अपनाते हैं और दूसरी ओर भारतीय लोग संस्कृति उद्देश्य को पूरा करने के लिए पश्चिमी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। उदाहरण अर्थ, पश्चिमी प्रौद्योगिकी जैसे रेल, प्रेस, वीडियो इंजन, वायुयान आदि ने संस्कृत ग्रंथों में उल्लेखित धार्मिक विचारों, विश्वास, कर्मकांडों आदि का विस्तार करके संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विकास का सहयोग दिया है। भारत के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में भजनों, कीर्तनों और हरि कथाओं का प्रचार बढ़ रहा है। धार्मिक व्याख्याताओं माइक्रोफोन का प्रयोग करके एक बड़ी सभा को संबोधित करते हैं। बहुत से धार्मिक महात्माओं, संतों, पराक्रमी पुरुषों, पतिव्रता पत्नियां आदि की जीवनिया का वर्णन करने वाले चलचित्र बनाए जाते हैं। प्रेसों के विकास द्वारा प्रकाशित संस्कृतीय पौराणिक गाथाओं, हरि कथाओं, संतों की कहानी आदि को स्कूल के बालकों और सामान्य भारतीय जनता में कम मूल्य पर उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी आदर्श पर आधारित भारत में संसदीय प्रजातंत्र ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में योगदान दिया है। डॉक्टर श्रीनिवास का मत है कि आधुनिक भारतीय सामाजिक जीवन का कोई सामाजिक विश्लेषण पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण के बीच अंतरक्रिया के विचार के बिना पूर्ण न होगा। डॉक्टर श्रीनिवास की इस चेतावनी पर ध्यान देने चाहिए कि संस्कृति और पश्चिमी मूल्यों के बीच संघर्ष भी है। जैसे ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक पद्धति का व्यवस्थित रूप से प्रयोग से संबंधित लौकिक दृष्टिकोण और परंपरावादी धर्मों के लौकिक दृष्टिकोण के बीच एक प्रकार का संघर्ष दिखाई देता है। दूसरा, असंस्कृतिकरण। प्रोफेसर श्रीनिवास के संस्कृतिकरण के प्रत्येक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप असंस्कृतिकरण के प्रत्येक का विकास हुआ। डॉक्टर डी एन मजुमदार ने अपने कृति कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज में कहा था कि यदि निम्न जाति या द्विज जातियों के रीति रिवाज, कर्म कांडों और जीवन शैलियों को अपनाकर अपने परंपरागत पेशों का त्याग कर रहे हैं तो इसे हम असंस्कृतिकरण से संबंधित परिवर्तन कहेंगे। इसी प्रकार द्विज जातियाँ निम्न जातियों के पेशे को अपनाने लगी हैं, जैसे द्विज जातियाँ के लोग जूते के कारखानों एवं दुकानें खोल रहे हैं। मिल्टन सिंगर ने अपनी पुस्तक वेन ए ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्नाइजेज में असंस्कृतिकरण के संबंध में कहा है कि असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया विभिन्न रूपों में स्पष्ट होती है। कर्म कांडों के पालन करने में कमी आ रही है, दैनिक धार्मिक क्रियाओं में कमी आ रही है, उत्तर रजस्वला कन्याओं के विवाह में वृद्धि हो रही है, अंतरजातीय और सगोत्र विवाहों का प्रचलन बढ़ रहा है, मासिक धर्म के समय भी स्त्रियाँ रसोई का कार्य करती हैं, मांस भक्षण और मदिरा पान के रीति रिवाज विकसित हो रहे हैं, देश विदेश की यात्राओं में वृद्धि हो रही है, विधवाओं की शादियाँ होने लगी है, पुश्तैनी पेशे छोड़े जा रहे हैं, विलासितापूर्ण भौतिक वस्तुओं के प्रति नवीन आकांक्षाएं जागृत हो रही है और अस्पृश्य जातियों के प्रति मनोवृत्तियाँ बदल रही है, गाँव और शहरों में पवित्रता और अपवित्रता संबंधी विचारों में परिवर्तन उत्पन्न हो रहे हैं, अब सगे संबंधियों की मृत्युओं पर परिवारों को पवित्र नहीं समझा जाता है, द्विज बड़ों में धार्मिक कर्मकांडों को पालन करने में शिथिलताएं देखने को मिलती है, कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के प्रति विरोधी आचरणों में वृद्धि हो रही है, बहुत से लोग तो ईश्वर में आस्था छोड़कर नास्तिकवाद और भौतिकवाद के मूल्यों को ग्रहण कर रहे हैं। मिल्टन सिंगर का मत है कि तमिल और द्रविड़ परंपरा के लोग वैदिक और संस्कृति परंपराओं को खंडन करते हैं, उनकी सामाजिक संस्थाएं रीति रिवाज एवं विश्वास अब्राह्मणिक एवं असंस्कृतीय है। इस परंपरा के लोगों ने रामायण को एक नाटक रूप में लिखा जिसमें रावण दक्षिण भारत का नायक और राम उत्तर भारत का खलनायक है। इससे सिद्ध हो जाता है कि द्रविड़ परंपरा के लोगों में असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया क्रियाशील है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि परंपरावादी भारतीय संस्कृति की ओर होने वाले परिवर्तन संस्कृतिकरण के प्रतीक है और आधुनिक समाज की दिशा में घटित होने वाले परिवर्तन असंस्कृतिकरण है। मिल्टन सिंगर का मत है कि इस अर्थ में संस्कृतिकरण और असंस्कृतिकरण चक्रीय प्रक्रियाएं हैं। तीसरा, पुनः संस्कृतिकरण। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने अपनी कृति मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में लिखा है कि पुनः संस्कृतिकरण एक घटना है जहां एक पहले से पश्चिमी कृति या आधुनिक कृति समूह आधुनिकीकरण के बहुत से प्रतीकों जैसे वेशभूषा, भाषा, खान पान की आदतें, जीवन शैली और राजनीतिक वैचारिकी का त्याग करता है और परंपरागत संस्कृति प्रतीकों और विश्वासों के प्रति पलटता है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के चानूखेड़ा गांव में इस प्रक्रिया के प्रति झुकाव का अवलोकन किया। आपने कहा है कि वहां के राजपूत लोग स्वतंत्रता के पूर्व पश्चिमी संस्कृति और उसके विचारधाराओं से अत्यंत प्रभावित थे, किंतु स्वतंत्रता के बाद उन्होंने जानबूझकर पश्चिमी संस्कृति के स्वरूप को त्याग करके परंपरावादी हिंदू संस्कृति प्रतीकों को पहचाना और हिंदुत्व की ओर झुके हुए एक रूढ़िवादी राजनीतिक दल जनसंघ की राजनीतिक वैचारिका में आस्था प्रकट की है। समकालीन भारतीय समाज और संस्कृति में जो परिवर्तन घटित हुए हैं उनके कारक के मुख्य रूप से यही प्रक्रियाएं हैं। असंस्कृतिकरण इस परिवर्तन के कारण न होकर एक परिणाम है, अतः असंस्कृतिकरण के द्वारा परिवर्तन को स्पष्ट करना उचित नहीं है। इसी प्रकार पुनः संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी समकालीन है, भारतीय समाज और संस्कृति के परिवर्तनों को स्पष्ट करने में प्रभावहीन सिद्ध होती है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह का यह मत है कि इस प्रक्रिया का अस्तित्व प्रयोग सिद्ध और तार्किक रूपों में संभव है, बिल्कुल निराधार प्रतीत होता है। वस्तुतः तो भारत में पुनः संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के संबंध में अभी शोध कार्य हुए ही नहीं है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह के प्रत्यय में कई कमियां हैं। पहला, शायद संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई गांव न मिलेगा जिसमें सामूहिक रूप से एक जाति पश्चिमी संस्कृति एवं उसकी विचारधारा से अत्यंत प्रभावित हुई हो। स्वतंत्रता के पूर्व पश्चिमीकरण ने प्रायः गांवों में प्रवेश नहीं किया था। जिन गांवों में पश्चिमीकरण हुआ उन गांवों में इस प्रक्रिया से विभिन्न जातियों के लोग तो प्रभावित हुए हो, किंतु कोई जाति सामूहिक रूप से प्रभावित नहीं हुई। दूसरा, चानूखेड़ा गांव के राजपूतों ने जानबूझकर पश्चिमीकरण का प्रभाव त्याग नहीं किया, बल्कि ऐसा करने के लिए जनसंघ दल के नेताओं ने प्रेरित किया होगा और अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए राजपूत लोग जनसंघ के दल में शामिल हो गए होंगे। तीसरा, जनसंघ दल संस्कृतिकरण का आदर्श तो कभी नहीं माना गया। पुनः संस्कृतिकरण की प्रक्रिया तब हो सकती है जब राजपूतों का समूह जनसंघ के दल में शामिल न होकर हिंदू संतों के रूप में गाँव में रहने लगता। चौथा, क्या यह संभव है कि कोई समूह पश्चिमी संस्कृति और उसकी विचारधारा रूपी पोशाक को अचानक उतार करके तुरंत शास्त्र अनुसारी हिंदू सांस्कृतिक प्रतीकवाद रूपी पोशाक पहन ले। यह एक सामान्य बात है कि किसी संस्कृति को ग्रहण करके उसकी उच्चता तक पहुंचने में कई दशक लग जाते हैं और वहां से पलटकर किसी दूसरी संस्कृति में ढलने के लिए भी पर्याप्त समय लग जाता है। पांचवा, डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने गांव के सीमित अध्ययन के आधार पर ही पुनः संस्कृतिकरण के प्रत्यय की रचना कर दी। सन 1975 के आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर सिंह यदि उस गांव के राजपूतों का अध्ययन करते तो शायद वह पुनः संस्कृतिकरण के स्थान पर पुनः दल बदलीकरण से संबंधित परिवर्तन पाते।